भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंध के 4थे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है राजा निमि से द्रुमिल द्वारा परमेश्वर के अवतारों का वर्णन। इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे, कृपया आप सब दोहराइए। श्री राजो वाच यानि यानि हि कर्माणि ये ये स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरे स्थानि ब्रुवन्तु नः। श्री राजो वाच, राजा ने कहा, यानी यानी प्रत्येक इह इस जगत में कर्माणि कर्मों के ये ये है प्रत्येक द्वारा स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से जन्म भी प्राकट्यों के चक्रे उन्होंने संपन्न किया, करोति संपन्न करते हैं, कर्ता संपन्न करेंगे वा अथवा हरि ही भगवान श्री हरि तानि उन्हें ब्रुवंतु कहें न हमसे। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, राजा निमि ने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से तथा अपनी इच्छा अनुसार इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, अतएव आप हमें भगवान श्री हरि की उन विविध लीलाओं को बतलाएं जिन्हें उन्होंने भूतकाल में संपन्न किया, इस समय संपन्न कर रहे हैं और अपने विविध अवतारों में भविष्य में संपन्न करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वति देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो भगवान के अवतारों का वर्णन इस अध्याय में है, बहुत से अवतारों का वर्णन श्री द्रुबिल जी करने वाले हैं इस अध्याय में। सो इस अध्याय को समझने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। सर्व शास्त्र दिपीयूष सर्व वेदेक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्या सर्व लोकैक दृक्प्रदा सर्व भागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्द पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गे मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायि अति नीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन् मा प्रेम्णा हृत्कण्ठयोऽसुरा। हरे कृष्ण। तो प्रश्न निमि महाराज पूछ रहे हैं, जैसे हमने बताया था 9 प्रश्न निमि महाराज ने पूछे और अभी हम लोग 6 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। 7वां प्रश्न अब आज जो हमने पढ़ा, उन्होंने पूछा भगवान के अवतारों के बारे में और इसका उत्तर अब दे रहे हैं। अगले अध्याय में 2 प्रश्न और, वैसे 9 प्रश्न पूछे। तो यहां वर्णन उन्होंने पूछा कि बताइए भगवान के अवतार, भगवान ने जो पूर्व में किया अभी भी कर रहे हैं आगे करेंगे, तो उनका वर्णन कीजिए। तो श्री ध्रुबिल जी प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में ही कहते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख होगा जो ये सोचेगा कि मैं भगवान के सारे लीलाओं को गुणों को वर्णन कर सकता। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए भी सारा वर्णन करना संभव नहीं है, केवल जितनी मेरी क्षमता है उतना मैं वर्णन करता। तो अध्याय के प्रारंभ में श्री ध्रुबिल जी हमें ये समझा रहे हैं कि जीव भगवान को उतना ही जान सकता है जितनी उसकी क्षमता है। तो क्या हर जीव की समान क्षमता होती है? जीव तो सब भगवान के अंश हैं, तो अंश के रूप में सब समान क्षमता होनी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कई लोग भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं? क्षमता हर जीव में है, वही क्षमता, लेकिन वो क्षमता ढकी हुई है। आवृत्तम ज्ञानम एतेना, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, आवृत्त है। जैसे जैसे वो क्षमता खुलती जाती है उतना उतना हम समझते जाते हैं भगवान। जैसे एक कली होती है, तो फूल निकलना प्रारंभ होता है, छोटी सी कली होती है, फिर वो थोड़ा सा खुलती है, फिर और खुलती है, फिर देखते एक दिन पूरा फूल बन जाती है। इसी तरह हमारी चेतना ढकी हुई है। आवृत्तम ज्ञानम एतेना, कौन सा ज्ञान आवृत्त है? भगवान ने जब भगवद गीता में कहा आवृत्तम ज्ञानम एतेना, कौन सा ज्ञान आवृत्त है? भगवान का ज्ञान, तो आवृत्त है। तो जैसे जैसे कली और कली से थोड़ा थोड़ा फूल खिलता है, फिर और पूरा पुष्प खिल जाता है, ऐसे ही हमारी चेतना भक्ति करते करते धीरे धीरे खुलती है। और हम जितना हमारी चेतना अनावृत हो चुकी है। आवरण कहना चाहिए जो कपड़ा ढका था या जो चीज ढकी थी वो खुल गई जितनी, उतना ही हम भगवान को जान पाए। और यही कारण है कि जिनकी चेतना पूर्ण रूप से ढकी है वे भगवान को नहीं मानते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, ज्ञान ढका हुआ है। जैसे जैसे ज्ञान खुलता है उतना उतना ज्ञान हमें होता है भक्ति में, और वो होता है भगवान की कृपा से। तो इसलिए भी यहां कहते हैं जितनी मेरी क्षमता है, दूसरे शब्दों में हमारी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए, अर्थात 100% देना। हमें ये नहीं सोचना है कि कोई बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है, कोई बहुत कम सेवा कर रहा है। कभी कभी हम किसी बहुत ज्यादा सेवा करने वाले को देखकर थोड़े से निराश हो जाते हैं, कह रहे वो तो इतना कर लेते हैं हम नहीं कर पाते। या कभी कभी जो बहुत कम सेवा कर रहा है उसको देखकर प्रभावित हो जाते हैं कि मैं क्यों इतना ज्यादा कर रहा हूं, तो कर रहा है ना बस इतना ही करते रहिए, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि ठीक है वो तो इतना ही कर रहा है, उससे 4 बुक डिस्ट्रीब्यूट की मैं 5 कर लेता हूं बस बहुत है, हालांकि मैं 50 कर सकता हूं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर कि अपना 100% हमें देना चाहिए, जितनी क्षमता उतना हमें देना चाहिए भगवान की सेवा। वैसे नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं 24 घंटे काम कर सकता हूं तो मैं केवल 5 घंटे करूंगा क्योंकि बाकी लोग भी 4-5 घंटे ही कर रहे हैं। ये भौतिक मानसिकता है। जब आप ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में बाहर काम करते हो तो फिर वहां ये मानसिकता आती है कि अरे सब लोग 8 घंटा काम कर रहे हैं, मुझे ज्यादा नहीं करना, अगर मुझे ज्यादा करना है तो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, ओवर टाइम चाहिए। ये भौतिक मानसिकता और भौतिक जगत के लिए ठीक है, लेकिन कृष्ण की मानसिकता या भक्ति की मानसिकता क्या है? भक्ति में कोई ओवर टाइम नहीं होता, क्योंकि भक्ति जो भी टाइम है वो भक्ति के लिए टाइम है, इसीलिए ओवर टाइम है ही नहीं। तो हमें 100% देना चाहिए जितनी अपनी क्षमता है, ना ज्यादा सेवा करने वालों से निराश हो और ना ही कम सेवा करने वालों से प्रभावित हो, अपनी क्षमता भगवान को दीजिए। तो ध्रुमेल जी ने ये कहा और फिर वो अवतारों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले वे पुरुष अवतार का वर्णन करते हैं, फिर गुण अवतार का, फिर लीला अवतार का, फिर मनवंतर अवतार का, ऐसे अवतारों के अलग अलग वर्णन करते हैं। तो पहले श्लोक में केवल प्रश्न है और दूसरे श्लोक से लेकर अध्याय के अंत तक 23वें श्लोक तक, छोटा सा अध्याय है, 23वें श्लोक तक अलग अलग अवतारों का उन्होंने वर्णन किया। तो वो प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार सबसे पहले पुरुष अवतार का वर्णन करते हैं कि भगवान इस जगत में कैसे सब चीजें प्रकट करते हैं, भौतिक सृष्टि करते हैं। पुरुष अवतार मतलब 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु, इन्हें 3 पुरुष कहा जाता है, पुरुष अवतार। तो ये जगत को प्रकट करते हैं। वैसे ही कहा जाता है कि भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं। तो क्या ये भौतिक जगत बनाना 3 गुणों से, त्रिभेर गुणमयी मम माया, 3 गुणों से जो माया है इसका ये जगत बनाना, क्या ये दिव्य लीला है भगवान की या भौतिक लीला है? प्रश्न आता है। भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, लेकिन जब भगवान ये जगत बना रहे हैं, भौतिक जगत, लोगों को कष्ट देने के लिए, उनको ये गुणों में डालने के लिए, अपने आप को भुलाने के लिए ये जब जगत बनाते हैं, तो क्या ये जगत सृष्टि की लीला दिव्य है या भौतिक है? ये लीला भी दिव्य है, भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य है, ये विश्वास है। तो जो भौतिक सृष्टि की रचना है ये भी उनकी लीला दिव्य है। भौतिक जगत दिव्य ना होगा लेकिन भौतिक जगत की सृष्टि और लीला उनकी दिव्य है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जब अपना विस्तार कर देते हैं महाविष्णु के रूप में और महाविष्णु केवल ये भौतिक जगत की रचना में कार्य करते हैं इसीलिए वो कम है, नहीं। सारी लीलाएं दिव्य है। तो इस तरह भगवान पुरुष अवतार के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर हर ब्रह्मांड में वही महाविष्णु गर्भोदक्षाएं विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, फिर वही गर्भोदक्षाएं विष्णु सारे स्थानों पर हर एक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं परमात्मा रूप में शिरोदक्षाएं विष्णु। तो ऐसे अलग अलग पुरुष अवतार। फिर उन्होंने वर्णन किया गुण अवतार का, जब ये सृष्टि हो गए, ब्रह्मांड बन गया, अब ब्रह्मा जी की जरूरत है, शिव जी की जरूरत है, विष्णु की जरूरत है। तो बताते हैं कि रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, तमोगुण शिव जी, और फिर विष्णु पालन करते हैं। इस श्लोक में ये नहीं कहा गया कि भौतिक रजोगुण के कारण सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी और भौतिक तमोगुण के कारण शिव जी संहार करते हैं। दो बातें कही गई, लेकिन एक बात नहीं कही गई कि भौतिक सत्व गुण के कारण विष्णु पालन करते हैं। तो विष्णु ये भौतिक गुणों को स्पर्श नहीं करते, वो विशुद्ध सत्व में है, चाहे वे पालन भी करें इस जगत का तो भी विशुद्ध सत्व में। तो ऐसे उन्होंने फिर गुण अवतारों का वर्णन किया। तो तीन गुण अवतार हैं, जैसे तीन पुरुष अवतार हैं, ऐसे तीन गुण अवतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। तो इसलिए ये गुण अवतार तीन गुणों के अवतार हैं, इसलिए गुण अवतार माने गए। अब उसके बाद लीला अवतारों का वर्णन शुरू करते हैं। तो लीला अवतारों का वर्णन शुरू करने में वो पहले वर्णन करते हैं नर नारायण ऋषि का। नर नारायण ऋषि, ये इनके माता पिता का नाम धर्म, इनके पिता का नाम था और माता का नाम मूर्ति। जो धर्म और मूर्ति के मूर्ति माता के गर्भ से प्रकट हुए नर नारायण ऋषि, और इन्होंने ऐसे कार्यों को किया, मूलतः उन्होंने नैषकर्म्यम, या कहना चाहिए कि किस तरह इस जगत में रहना है, रहते हुए भी जगत में बंधना नहीं है, इसका उन्होंने प्रचार किया। आगे चलकर उन्होंने बद्री काश्रम में बहुत कड़ी तपस्या की। तो वर्णन करते हैं कि जब वो तपस्या कर रहे थे बड़ी कड़ी बद्री काश्रम में, इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र भूल गए कि कौन है वो। इंद्र ऐसे कई बार, जब कृष्ण पारिजात वृक्ष लेकर आ रहे थे इंद्र भूल गए कि कौन, युद्ध कर दिया। जब कृष्ण ने गोवर्धन खाया इंद्र भूल गए कौन। पुनर्नारायण ऋषि तपस्या कर रहे, इंद्र भूल गए, और इंद्र ने सोचा कि ये तो तपस्या करके मेरा सिंहासन ले लेंगे, ये मेरे सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। देखिए, जब हम खुद आसक्त होते हैं तो हम अन्यों को भी आसक्त मानते हैं। भगवान को ही आसक्त है, उनको इंद्र के आसन से क्या लेना देना। वो तो कितने आसन, कितने सारे इंद्रों को उन्होंने आसन दिया है, लेकिन इंद्र सोच रहे हैं क्यों। तो ये हमारी मानसिकता कि जब हम खुद आसक्त होते, आत्मवत मन्यते जगत, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी हम लोग आपस में संबंध रखते हैं, हमको लगता है ये व्यक्ति बहुत खराब है, ये व्यक्ति एक्चुअली धोखा दे रहा है, ये ऐसे झूठ बोल रहा है। क्यों? भावना हमने है, आत्मवत मन्यते जगत, हम आसक्त हैं, इसलिए हम सोचते सारे जगत आसक्त होगा। हमें भोग की इच्छा है, इसलिए हम सोचते सारे जगत भोगी होगा। इसलिए शुद्ध भक्त क्या है, उसको केवल भगवान के सेवा की इच्छा है, इसलिए वो देखता है सारा जगत भगवान की सेवा कर रहा है। आत्मवत मन्यते जगत, ये जो जगत है, ये जो जिसको हम देख रहे हैं जगत, ये हमारे मानसिकता का बाहरी प्राकट्य और कुछ नहीं है जगत। इसीलिए श्रील प्रभुपाद आगे भागवतम के चौथे स्कंद के एक तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक जगत नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो जगत है, ये केवल हमारी मानसिकता का प्राकट्य है। हम जो सोच रहे हैं, हम जिस तरह से विचार कर रहे हैं, हमें जगत वैसा ही दिखता है। जैसे कभी कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है, उसको जगत बुरा नहीं लगता। जैसे कोई ओलंपिक्स में मेडल जीत ले तो उसको बहुत बुरा लगता है। जिस दिन उसको मेडल पहनाया जाता है तो क्या वो कहता है, बेकार है इस सब जगत, छोड़ना है जगत। कहता है कोई, बिल्कुल नहीं, उसको बड़ा अच्छा लगता है, यही तो चाहिए, यही जगत है। क्यों? क्योंकि वो हृदय से प्रसन्न है। और जब कोई हृदय में दुखी होता है तो इसी जगत को कहता है बेकार है, छोड़ना है, क्या रखा है यहां पर। तो देखिए जिस तरह की हमारी मानसिकता है, जिस तरह के हमारे विचार सोच है, वो हमारे लिए जगत बनाता है। इंद्र आसक्त है अपने आसन से, इसलिए जो तपस्या करता है इंद्र सोचता है मेरे आसन को लेना चाहता है, क्योंकि इंद्र हर कार्य आसन बचाने के लिए कर रहा है, इसलिए उसको लगता है सब व्यक्ति मेरे शत्रु हैं। तो इससे हम लोग बहुत अच्छी चीज सीखते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है कृष्ण को पाने के लिए, केवल चेतना को बदलना। जय श्री शिवराय की, केवल चेतना को बदलना है बस। आज हम देख रहे हैं बहुत एक जगत बहुत कष्ट है, जहां देखो दुख है, मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में कष्ट है, हाय हाय हाय, इसे ही बदल लेना है बस। सोच बदलनी, विचार बदलने, ठीक है कष्ट किसके जीवन में नहीं है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, किसके जीवन में कष्ट नहीं, हर एक को अपना कष्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो हमें क्या सोचना है, कष्ट होते हुए भी कितनी अच्छी चीजें। तो जीवन में अच्छी चीजों पर जो हमें कृपा मिली है भक्ति में या अन्य भी, उन पर फोकस कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए कि भगवान ने हमें क्या दिया। इस पर ध्यान नहीं दीजिए कि क्या नहीं दिया है, हमेशा दुखी रहेंगे, अरे मुझे कार नहीं मिली, अरे मुझे बंगला नहीं मिला, अरे मुझे पैसे नहीं मिले, अरे मुझे अच्छा परिवार नहीं मिला, उससे जितना ये सोचते रहेंगे दुखी रहेंगे। केवल मानसिकता चेंज कीजिए, बदल दीजिए। आत्मवत मन्यते जगत, अंदर से खुश है व्यक्ति बाहर सारा जगत अच्छा दिखेगा। तो इसलिए हमारे लिए क्या संदेश है, अपने मन में कृष्ण का स्मरण तीव्र कर दीजिए, बाहरी जगत अपने आप कृष्णमय हो जाएगा, हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। अपने मन को कृष्णमय करना जरूरी है। महाप्रभु ने कहा मन मोरा वृंदावन, सो हमें वृंदावन भागने की जरूरत नहीं है, प्रभुपाद वृंदावन छोड़ कर गए और जहां गए वहां वृंदावन बनाया हूं। क्यों? हृदय में वृंदावन था। तो ये बहुत सुंदर हमारे लिए आचार्यों की उदाहरण है। तो इसलिए मन को हमें बहुत मजबूत करना है कृष्ण के स्मरण में और बाकी सब चीजें। तो भक्ति तीव्रता से कीजिए, इसीलिए कहा जाता है भक्ति में कपट नहीं होना चाहिए, मुंह में राम बगल में छुरी ऐसा कहते हैं, वो कपट नहीं चाहिए, वो भक्ति नहीं है। छुरी तो अंदर चाहिए, बगल में नहीं चाहिए, ग्रंथियों को काटने के लिए। तो इसीलिए हमें प्रयास ये करना है कि बाहरी कष्टों से, बाहरी दुखों से, बीमारियों से, धन की कमी से, जो भी चीजें हैं उनसे ज्यादा दुखी ना, उन पर जितना हम ध्यान देंगे उतने ज्यादा दुखी होंगे। ये जगत ऐसा ही बना है, जब जितना ज्यादा भौतिक जगत में हम लोग फंसते हैं उतने ज्यादा कष्ट देता है। जो भौतिक आनंद है ये बंधन का कारण, जिसके पीछे हम भागते हैं, मुझे बांध दो, मुझे बांध दो, मुझे बांध दो। जब व्यक्ति कहता है मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो कह रहा है मुझे बांध दो, मुझे बांध दो, मुझे बांध दो। लेकिन जब व्यक्ति कहता है मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, वो आनंद नहीं मांगता। भक्त कभी आध्यात्मिक आनंद की भी कामना नहीं करता, वो तो केवल कृष्ण चाहे, आनंद तो अपने आप आएगा। तो ऐसे इंद्र ने सोचा कि नर नारायण ऋषि मेरा सिंहासन लेने वाले हैं, तो उन्होंने कामदेव को भेज दिया, कुछ अप्सराओं को भेज दिया कि जाओ इनकी तपस्या भंग करो। तो कामदेव ने आकर बहुत सुंदर वातावरण वहां बद्रिकाश्रम में उत्पन्न कर दिया, एकदम रमणीय है, कहना चाहिए कि किसी का भी मन प्रभावित हो जाए ऐसा वातावरण। और अप्सराएं नृत्य करने लगी नर नारायण ऋषि के सामने कि वो लोग प्रभावित होकर देखें और उनकी तपस्या भंग हो जाए, भगवान को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। तो उस समय जब वो लोग ने ये सारा प्रयास कर लिया, भगवान प्रभावित नहीं हुए तो घबरा गए कामदेव। तो भगवान ने उनको कहा डरो नहीं, भगवान हंसने लगे, भगवान ने कहा डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। मतलब वो कामदेव घबरा गए कि शिव जी भी जला देते हैं, बताया आपको कामदेव को जला दिया था शिव जी ने, तो उसे जो ये पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने कहा डरो मैं जानता हूं तुम लोग ये जो कर रहे हो ये तुम्हारी बचकाना हरकतें हैं, तो कोई बात करते रहो। भगवान केवल हंस दिए, क्योंकि जब कोई बच्चा कोई ऐसे कार्य करता है तो माता पिता क्या करते हैं, हंस देते हैं, ठीक है करते रहो। तो उस समय जितने देवता वहां आए थे, कामदेव थे इत्यादि, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, जो अब घबरा गए कुछ हुआ ही नहीं और भगवान ने कुछ किया भी नहीं, ठीक है ना, क्रोधित हुए भगवान, ना उन्होंने अहंकार दिखलाया, ना जलाया, कुछ नहीं किया। उस समय देवताओं ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की भगवान से, उन्होंने नारायण ऋषि से कहा, को प्रणाम करते हुए कहा कि आपके अंदर ना तो अहंकार है ना क्रोध है, और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने हम पर क्रोध नहीं किया, हमको श्राप नहीं दिया, क्योंकि आपका स्वभाव है, आप बदलते नहीं। देखिए इस जगत में हर व्यक्ति बदल जाता है, समय के अनुसार बदल जाते हैं, जो गुणों के प्रभाव के अनुसार बदल जाते हैं, स्थितियों के अनुसार व्यक्ति बदल जाता है। जैसे जगत में कहा जाता है अनुभव बहुत बड़ा शिक्षक है, एक्सपीरियंस इज द बिगेस्ट टीचर। तो अनुभव से लोग सीखते हैं, मतलब बदलते हैं। भगवान वो ना कभी बदले हैं ना बदलेंगे। तो देवता ये कह रहे हैं कि आप कभी बदलते ही नहीं है, आप जैसे हैं वैसे, आप हमेशा कृपा करना चाहते हैं वो करते ही रह रहे, चाहे व्यक्ति कुछ भी क्यों ना कर ले, आप नहीं बदलते। तो देवताओं को ये कहते कि आप बदलते नहीं हैं, क्योंकि आप में ना तो अहंकार है और ना ही क्रोध है। फिर वो कहते कि आपका क्या कहना, आपके भक्त भी ऐसे ही है, भक्तों का वर्णन करते हैं, बोलते आपके भक्त भी ऐसे, कैसे हैं आपके भक्त? तो कहते हैं कि जितने भी बाधाएं हम उनको देते हैं, देवता भगवान के सामने मान लीजिए कि कुछ स्वीकार कर रहे हैं, और देवता कहते हैं कि हम लोग जो व्यक्ति हमें यज्ञ के द्वारा कुछ ना कुछ देता रहता है, हम उसके जीवन में कष्ट नहीं लाते, लेकिन भक्तों के जीवन में हम कष्ट लाते हैं। लेकिन भक्त कैसे हैं आपके? हम उनको कष्ट देते हैं, वो कष्टों के सर के ऊपर पैर रख कर चल देते हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी कोई कद्र नहीं करते भक्त। तो यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो बताते हैं कि वो क्यों देवता भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों लाते और भक्तों को क्या करना चाहिए। देवता भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों लाते हैं? वो तो भक्त हैं, उनको लाना नहीं चाहिए, ये सब भगवान के सेवक हैं। अहंकार, अपने ऐश्वर्य का, अपनी स्थिति का उनको अहंकार हो जाता है, और जब देखते हैं कि भक्त उनको कोई स्थान ही नहीं दे रहे हैं, जैसे इंद्र की पूजा बंद कर दी नंद महाराज आदि ने, कोई महत्व ही नहीं दिया, इंद्र से पूछा भी नहीं कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारा बच्चा कह रहा, बंद कर दी सीधे, चलो छोड़ो गोवर्धन की करेंगे। तो अहंकार इंद्र का कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, तो इसलिए तकलीफें देते हैं, कष्ट देते हैं, बाधाएं देते हैं सीधा। तो देवता बाधाएं देते हैं और भक्त क्या करते हैं? उन बाधाओं के सर पर पांव रखकर चल देते, चिंता ही नहीं करते जो बाधाएं आ रही हैं, वो भागते नहीं है ज्योतिषियों के पास, हाय हाय बताइए क्या करें। भक्त क्या करते हैं? अगर जीवन में कष्ट है, बोले आज 15 माला एक्स्ट्रा कर लो। वो भागते नहीं ज्योतिषी के पास, हाय हाय बचाइए मुझे, क्या होगा कुछ बताइए, हाथ देखिए तोते के पास जाकर, तोता क्या बचाएगा, जब कृष्ण जो बचा सकते हैं वो कर कृष्ण करेंगे, तोता थोड़ी कुछ कर सकता। तो भक्त क्या होते हैं, जब कष्ट होता है तो भागते नहीं है, कृष्ण पर आश्रित रहते, मारो भी राखो भी जो इच्छा को मार, मारना है ना ज्यादा से ज्यादा मार डालो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये भक्तों का है। तो भक्तों के जीवन में ये जो बाधाएं आती हैं अन्यों की नहीं आती, इसीलिए हम लोग कई कई बार देखते हैं ये प्रश्न मन में आता है कि प्रभु जी वो लोग तो भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं, आराम से पैसा भी है उनके जीवन में और सारा कोई तकलीफ नहीं, गाड़ी में घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ इतने जपा कर रहे हैं सब हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। तो क्यों होता है ये सब, तो ये देवता यहाँ कारण दे रहे हैं कि हम लोग उनको देखते हैं क्योंकि वो हमें कुछ कुछ थोड़ा सा दे देते हैं, लेकिन अंत क्या है, भक्तों को ये सब की चिंता नहीं है क्योंकि आज है फिर वही होने वाला है। अगर आज हमने इस जन्म में भक्ति नहीं की, अगले जन्म में वही पुनः मोशी का भव, फिर वही होने वाला है। कितने जन्म तक आप करते रहोगे, ये बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इससे बाहर निकले, इस जगत में सुखी रहने की योजना नहीं बनाए, इस जगत से बाहर जाने की योजना बनाए, वो व्यक्ति सुखी है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग यहां से बाहर निकलें। तो जितनी भी बाधाएं आए, जीव गोस्वामी बहुत अच्छी बात समझाते हैं, क्यों कहते हैं कि जब भक्त के जीवन में बाधा आती है तो क्या होता है, वो दृढ़ हो जाता है और ठीक है मुझे और आपत्ति करनी, ये भक्त है, टूट जाता है वो भक्त नहीं है कि छोड़ो ये कृष्ण विष्णु की भक्ति, मैंने अपने कुल देवी की पूजा नहीं की, कुल देवता की पूजा नहीं की, इसीलिए सब हो रहा है, बंद करो कृष्ण भक्ति, जाओ वही सब करो, ये नहीं। भक्त क्या है, और मजबूत हो जाता है, कोई बात नहीं, कृष्ण कष्ट भेज रहे ना भेजने दे, कृष्ण जानते मेरी कितनी क्षमता है। एक्चुअली जो व्यक्ति ज्यादा शक्तिशाली होता है उसको कष्ट ज्यादा भेजते हैं कृष्ण, जो कमजोर होता है उसको कहां कष्ट भेजेंगे, मर जाएगा बेचारा एक ही कष्ट में, भगवान ज्यादा भेजते। तो जिसको ज्यादा आ रहा है उसको समझना चाहिए कि कृष्ण आपके ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं कि आप सहन कर सकते हो। तो कष्टों में भक्त की दृढ़ता बढ़ जाती है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि एक कष्ट, दो कष्ट, तीन कष्ट, ये भक्त के लिए एक सीढ़ी बनते जाते हैं कृष्ण के पास जाने के लिए, क्योंकि हर कष्ट में कृष्ण को समर्पण करता है। और ऐसा नहीं है कि कृष्ण छोड़ देते हैं कष्टों में। जैसे एक बार एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा था कि भगवान के साथ जा रहा है, तो उसको दो पांव के निशान दिखाई दे रहे, एक उसके और एक भगवान के, और फिर चलता चलता आगे पहुंचा, बहुत भयंकर स्थान था, बहुत कष्टमय स्थान था, अचानक उसने देखा केवल एक ही पांव के निशान है, तो वो बहुत घबरा गया। और जब उसे भगवान से कहा कि भगवान ये क्या, जब जब सब कुछ ठीक था तब आप मेरे साथ चल रहे थे, और जब कष्ट आए दुख आए तुम आपने मेरा साथ छोड़ दिया, ये कैसे। भगवान ने कहा मूर्ख, जब कष्ट नहीं थे हम लोग दोनों साथ चल रहे थे, जब कष्ट थे तो मैंने तुम्हें अपने कंधों पर उठा लिया था, इसीलिए एक चिन्ह ही दिखाई दी, भगवान खुद चल रहे थे। तो ये भक्त है। तो ऐसा नहीं कि भगवान साथ छोड़ देते हैं जब कष्ट होता है कि जाओ मरो अकेले, जो करना है जब ठीक हो जाएंगे तब आना, भगवान हर समय साथ में रहते हैं, कष्टों में तो विशेष करके रहते हैं। जैसे सब कुछ नॉर्मल है तो साथ में चल रहे हैं, कष्ट है तो अपने कंधों पर उठा लेते हैं भक्त को कि तुम्हें ज्यादा कष्ट ना हो, मैं सारे कष्ट लेता, ये विश्वास का। तो इसीलिए जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जितने भी बाधाएं आती हैं वो सीढ़ियां हैं कृष्ण तक जाने के लिए। सुदेवताओं ने ऐसे प्रार्थना की कि आपके भक्त जो होते हैं वो भी हमारी चिंता ही नहीं करते। और फिर देवता कहते हैं कि कुछ लोग भक्ति के बिना तपस्या करते हैं। अब उनका वर्णन कर रहे हैं, पहले भक्तों का कर दिया, अब उनका कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत तपस्या करते हैं लेकिन भक्ति नहीं है उनके हृदय में। तो देवता कहते हैं कि वो दो प्रकार से फंस जाते हैं। एक हम उन्हें फंसा देते हैं। देखिए लोगों को लगता है कि देवताओं के पास जाना अच्छा है, सब कुछ मिल जाता है। देवता क्या कह रहे हैं इसको सुन लीजिए। देवता कह रहे हैं हम उस व्यक्ति को फंसा देते हैं। इसमें धोखा देते हैं। क्यों? वो तपस्या कर रहा है, कुछ बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन भक्ति नहीं है हृदय में। तो हम उसको क्या करें, दो प्रकार से फंसता है। एक देवता फंसाते हैं उसको भोग देकर, वो कहते खुद ही कह रहे देवता, या उसको भोग देकर फंसा देते हैं, वो भोग में खुश हो जाता है, उसको थोड़ा सा भोग देते हैं, उसको लगता है कि हाँ यही जीवन है, और वो फंसा रहता है इससे। और दूसरा कि कभी कभी व्यक्ति इन भोगों से परे रहता है, उसको नहीं चाहिए भोग का जीवन, तो वो कैसे फंसता है, वो क्रोध से फंस जाता है, देवता कहते हैं। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण है विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, और देवताओं ने भोग भेज दिया, अच्छा बहुत तपस्या की, ये लो मेनका आ गई, और फिर भोग में पड़ गए। और उसके बाद अब बिल्कुल भोग नहीं करना है, तपस्या करनी है, उन्होंने कड़ी तपस्या की, देवताओं ने रंभा को भेजा, इस बार बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए विश्वामित्र। अरे अरे, वो पहले मेनका आई थी, उसने सब मेरी सारी तपस्या भंग कर दी, अब बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, और लेकिन ये रंभा मेरी तपस्या भंग करने आई है, उन्होंने क्रोध में उसको पत्थर बना दिया, क्रोध कर दिया, सारी तपस्या फिर खप समा। तो इसलिए देवता कहते हैं कि जो भक्त नहीं है, भक्तों की तो बात उन्होंने कर ली कि वो तो बाधाओं के सर पर, वो तो हमें वैल्यू ही नहीं देते। भक्त ऐसा नहीं है कि देवताओं को वैल्यू नहीं देते, वो भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन देवता कह रहे कि वो तो हमारे क्षेत्र में है ही नहीं। जैसे ना यमराज भी अपने दूतों को कहते हैं कि जिसके भी मुख पर भगवान का नाम देखो, जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा हो, जान लो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उसके पास तो जाना ही नहीं। तो यही चीज देवता कह रहे हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है वो भी फंस जाता, वो इस जगत में हम फंसा देते हैं, भक्तों को नहीं फंसा पाते। तो ऐसी प्रार्थनाएं उन्होंने की, और ऐसे जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने प्रार्थना की, भगवान मुस्कुरा रहे थे, और भगवान ने उसी समय बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियों को प्रकट कर दिया। भगवान उनको कह रहे थे तुम ये दो चार अप्सराओं को लेकर आए हो मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे प्रभावित करने के लिए, ये देखो मेरे पास क्या है। तो भगवान ने बहुत सारी सुंदर, मतलब इतनी सुंदर थी वो सारी कि ये जो सामने खड़ी थी कॉकरोच लग रही थी उनके सामने अप्सरा, इतनी सुंदर अप्सराओं को प्रकट कर। और फिर भगवान ने क्या कहा, मेरी तरफ से एक उपहार ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ, इसमें से जो आपको पसंद आए ले जाओ, और ये मैं कहता हूं कि ये तुम्हारे स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा बनेगी, जिसको भी ले जाओगे इसमें से। मतलब वो ये बता रहे थे भगवान कि तुम्हारे स्वर्ग में जो अप्सराएं हैं उनसे ज्यादा तो ये सारी जो भी ले जाओगे श्रेष्ठ बनेगी, किसी को भी ले जाओ, ये नहीं कहा भगवान ने इसको ले जाओ ये बहुत अच्छा ये है, भगवान ने कहा लो इनमें से जिनको ले जाना है एक उपहार ले जाओ मेरे लिए, मेरी तरफ से इंद्र के लिए, इंद्र नहीं आए थे तो इंद्र के लिए उपहार भेज देते, ले जाओ। अर्थात भगवान क्या दिखा रहे थे, तुम किससे मुझे प्रभावित कर रहे हो, ये सौंदर्य से, ये देखो सौंदर्य सारा स्रोत मैं हूं, स्रोत सुंदरता कहां से आती है, मुझसे आती है। तो ये बहुत सुंदर संदेश भगवान ने हम सबके लिए दिया है कि भगवान को अपने भौतिक ऐश्वर्यों से प्रभावित मत कीजिए। आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास मान सम्मान है, आपके पास कला है, कोई भी चीज है आपके पास, उससे भगवान को प्रभावित करने का प्रयास मत कीजिए कि इससे हम ऐसे भगवान को कंट्रोल कर लेंगे। भगवान नियंत्रित होते हैं केवल प्रेम से, केवल सेवा से, अन्य किसी चीज से भगवान नियंत्रित नहीं होते। इसलिए प्रभावित करने का प्रयास मत कीजिए, इंद्र ने कर लिया और भगवान उनको दिखा रहे ये लोग ले जाओ। तो देवता बड़े, उनको बड़ी शर्म आ रही थी अपने ऊपर, हम क्या करें, ये क्या हो गया, अब तो स्वर्ग की बड़ी अच्छी अच्छी अप्सराओं को लाए थे कि ये कुछ प्रभावित हो जाएंगे, भगवान ने तो उनसे भी बहुत अच्छी दे दी, ले जाओ जिसको ले जाना। तो खैर भगवान का आदेश था तो उन्होंने उनमें से एक को चुना और वो बनी उर्वशी, जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं में से उर्वशी। उन्होंने कहा भगवान ने ले जाओ, दे देना गिफ्ट दे। सारे देवता फिर सर झुकाकर चल दिए वहां से और पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र बड़ा इंतजार कर रहे थे, हाँ क्या हुआ बताओ, क्या परास्त हो गए, कौन क्या हुआ? तो उन्होंने उर्वशी को दिया, ये लीजिए भगवान नर नारायण ऋषि ने आपके लिए उपहार भेजा है। तो इंद्र बहुत घबरा गए कि मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे ये नर नारायण ऋषि की कथा उन्होंने कही कि किस तरह भक्ति ये ही जीवन का सार है। फिर आगे और अवतारों का वो वर्णन करते हैं। सो उन्होंने हंस अवतार का वर्णन किया, दत्तात्रेय का वर्णन किया, कुमारों का, ऋषभ का, हयग्रीव का, ये सारे अवतार अलग अलग हुए हैं। हंस अवतार में भगवान ने ज्ञान दिया, आएगा इसमें आगे। हंस अवतार में ज्ञान दिया भगवान ने, हयग्रीव के रूप में उन्होंने वेदों की रक्षा की, और दत्तात्रेय के रूप में भी उन्होंने ज्ञान दिया। तो ऐसे ही अलग अलग वर्णन उन्होंने किए। फिर उन्होंने मत्स्य अवतार का वर्णन किया। वर्णन मतलब केवल नाम ले रहे हैं कि भगवान के क्या क्या अवतार हुए। तो मत्स्य अवतार जिन्होंने सत्यव्रत की रक्षा की। सो मत्स्य अवतार ये जितने भी अवतार आए एक एक संदेश हमें देकर चले जाते हैं। मत्स्य अवतार क्या संदेश देते हैं? मत्स्य अवतार देते हैं कि भगवान भी अपने भक्तों पर आश्रित होकर आनंद लेते हैं। छोटी सी मछली हाथ में आ गई, राजा ने फेंक दिया पानी में, ठीक है, फिर पानी लिया, फिर आ गई, फिर फेंक दिया, फिर फेंकने लगे तो मछली कह रहे थे इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं अंदर, आप मुझे फेंक रहे हो, कौन रक्षा करेगा मेरी? अच्छा ठीक है ले जा। तो भगवान भी आनंद लेते हैं भक्तों पर आश्रित होने पर। जब भक्तों पर पूर्ण आश्रित हो जाते हैं, जैसे विग्रह मंदिरों में विग्रह होते हैं, भगवान पूर्ण आश्रित है भक्तों पर। अगर देर से खोलेंगे तो देर से खाएंगे, टाइम पे खिलाएंगे तो टाइम पे खाएंगे, भक्त पर आश्रित है पूरे। और होता भी है, भक्त दिव्य स्तर पर है तो कभी समय पर लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, भगवान बैठे रहते हैं भूखे बेचारे आश्रित। तो ये मत्स्य अवतार हमें संदेश देते हैं। और भी ऐसे बहुत मत्स्य अवतार के बहुत से संदेश है। जैसे वो संदेश देते हैं कि ये भवसागर में मत्स्य अवतार की लीला क्या हुई थी, पानी पानी हर समय जल हो गया, फिर वो नाव में बैठे राजा सत्यव्रत, और फिर नाव को उन्होंने लगा दिया मत्स्य अवतार से, और फिर वो मत्स्य अवतार ये प्रलय के जल में भी उनको लेकर घूम रहे हैं। संदेश दे रहे हैं कि ये जो भवसागर है इसमें अगर हम अपनी नाव, शरीर रूपी नाव, जैसे इसी में इसी स्कंद में आएगा, हृदयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो शरीर है एक नाव की तरह है, तो इस नाव को अगर हम बांध दें कृष्ण से तो चाहे कैसा ही जल क्यों ना हो भवसागर से पार कराना वो फिर कृष्ण का काम। हमें केवल नाव को हुक करना है, बस लगा दिए कृष्ण से। जैसे सत्यव्रत ने बस मत्स्य अवतार में लगा दिया, उसके बाद मत्स्य अवतार की चिंता। तो ऐसे बहुत से संदेश मत्स्य अवतार से हमें मिलते हैं। फिर आगे वर्णन वराह अवतार का करते हैं। वराह अवतार हमें ये सिखलाने के लिए आए कि चाहे भगवान कितना ही भौतिक दृष्टि से निकृष्ट रूप ले ले, लेकिन वो दिव्य बने रहते हैं, उनकी दिव्यता में कोई कमी नहीं आती। फिर आगे वर्णन कूर्म अवतार का करते हैं। कूर्म अवतार ने क्या किया था? कूर्म अवतार ने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण कर लिया था जब समुद्र मंथन हो रहा था। भगवान संदेश देते हैं कि वो सब कुछ धारण करने की क्षमता रखते हैं। इस पृथ्वी को धारण करते हैं, ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, और जो भक्त हैं उनके सारे कष्टों को भी धारण कर सकते हैं, बस केवल उनको देना है। फिर गजेंद्र का वर्णन करते हैं। गजेंद्र की कथा हम सब, हम इन कथाओं का वर्णन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना ही इन्होंने किया है और ना ही इतना समय है कि एक एक अवतार का वर्णन करें। तो गजेंद्र को बचाने आए भगवान क्या सिखला रहे हैं? भगवान सिखला रहे हैं कि अगर असहाय अवस्था में, निस्सहाय अवस्था में उनको पुकारा जाए तो भगवान कहीं भी क्यों ना हो तुरंत आते हैं। जैसे गजेंद्र ने पुकारा, भगवान कहां थे? वैकुंठ में थे। उन्होंने कहा चलो चल दिए, बड़ी तेजी से चलो। गरुड़ को कहा, गरुड़ चल रहे अपनी फुल स्पीड में, पूरा टॉप गियर, लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं है, अरे और तेज चलो। गरुड़ ने कहा फुल बस इससे ज्यादा नहीं जा सकता। भगवान ने कहा ठीक है तुम रुको, उनको अपनी पीठ पर बिठाया खुद भागे भगवान। ये उनकी आतुरता है। अगर भक्त उनको निस्सहाय अवस्था में पुकारता है तो भगवान आतुर हो जाते हैं उसके पास जाए। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, हस्तिनापुर में थी और भगवान द्वारका में थे, जैसे ही पुकारा भगवान पहुंच गए। तो ये गजेंद्र के द्वारा वो दिखाते हैं कि वो बहुत दूर भी है और बहुत पास भी है। ईशोपनिषद में हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान तन्नय जति तद्दूरे तदंतिके, भगवान दूर भी है भगवान निकट भी है। तो कैसे दूर है और कैसे निकट है हमारी चेतना के अनुसार। हम चाहें तो भगवान को बहुत निकट रख सकते हैं अपने हृदय में और हम चाहें तो उनसे बहुत दूर रह सकते हैं। फिर आगे और कई अवतारों का वर्णन करते हैं, नरसिंह अवतार का वर्णन करते हैं, वामन अवतार का वर्णन करते हैं, जो इस मनवंतर के अवतार है, पूरे मनवंतर तक अभी भी है वो रहेंगे। और फिर परशुराम जी, रामचंद्र जी, आगे जो आने वाले हैं। उस समय तक कृष्ण नहीं आए थे तो उन्होंने कहा भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आएंगे यदुकुल में। और फिर बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, इनका वर्णन वो करते हैं। फिर वो कहते हैं कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, असीमित अवतार हैं। तो कैसे हमें इन अवतारों का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, असीमित हैं। जैसे कि भगवान के गुण असीमित है, अनंत देव अनंत काल से अनंत मुखों से भगवान का गुणगान करते आ रहे हैं लेकिन आज तक समाप्त नहीं हुए। इसीलिए अध्याय के अंत में कहते हैं कि भगवान के असीमित अवतार हैं और भगवान के गुण भी असीमित हैं, उनका कोई वर्णन कर नहीं सकता। तो सार के रूप में इन अवतारों का वर्णन करके वे हमें बता रहे हैं कि इस जगत में सुखी होने का प्रयास मत करो, यहां से भागने का प्रयास करो। इस जेल को तोड़कर भागो। ज्यादातर साधक तक कहा जाता है जेल तोड़ना नहीं चाहिए, अपराधी माने जाते हैं, लेकिन ये जो भौतिक जगत जिसको हमने खुली जेल बना रखा है इससे बाहर यहां प्रसन्न होने का प्रयास मत करो। कृष्ण की कृपा को समझो, कृष्ण कैसे कार्य करते हैं इसको हमें समझना चाहिए कि कृष्ण अपने हिसाब से कार्य करते हैं, हमारे हिसाब से नहीं। हम सोचते हैं कि कृष्ण की कृपा आनी चाहिए मुझ पर, अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि हमने सोचा कि कृष्ण की कृपा ऐसे आई, लेकिन भगवान जानते हैं कैसे देना। लेकिन भक्त को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण की कृपा निश्चित आएगी। तो ये अध्याय यहां पर समाप्त हुआ। अब कल वर्णन करेंगे पांचवें अध्याय का, जो दो और प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम।